इत्यादि समस्त प्राणियां अपनी अपनी सेवा में वल कैसे सेवा करें?
अपने पंचम से
अपने मधुर कंठ से सेवा, विशेषकर किसी को प्रसन्न करने के लिए संगीत भी एक माध्यम है। संगीत से आदमी जितना प्रसन्न कर सकता है सहजी रूप में उस रूप में नहीं होता है। श्री कृष्ण भी यथासंभव उनकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। मयूर ने अपना पंख दे दिया तो इसको लगा लिया। वहां पर हिंस बस जानवर इत्यादि जो हैं वो अपने वो स्वाभाविक को दे दिया, बदल दिया, शुद्ध विशुद्ध सत्व उनका हृदय बन गया। अतः कल्पना बाहुल्य प्रयोजन की, और कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं, ये वृंदावन सब अपने आप स्वाभाविक रूप में हो जाता है। यहां पर सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि कहावतंसस्य मयूर प्रिय शशि भगवते बरहावतंस अवतंस मैंने यहां पर प्रिय लिखा बरह प्रिय मयूर के बड़े प्रिय कृष्ण है। वैसे तो सबके प्रिय हैं किंतु मयूर उनको देखते ही चारों तरफ से घेर लेते हैं, नृत्य करने लगते हैं। मेघ है उनका प्रिय, मानो मेघ ही उतर करके उनके सामने आ गया, इसलिए मयूर देखते ही प्रतीक्षा करते रहते हैं और कृष्ण को देखा और उनको घेर बड़े आनंद से मत तो होकर के बजाने लगते हैं, नाचने लगते हैं कृष्ण को, कुछ विस्तार करके नृत्य करने लग गए। नाना विध भंगी करते करते तरह तरह से भंगी से पहले भंगी से करते हैं, इधर जाते हैं फिर इधर से घुमाते हैं पैरों से, कैसे करते हैं ऐसे मालूम है कोई नाट्य शास्त्र में नृत्य सीख करके और तब भी ऐसा करते हैं। बड़े बड़े संगीत कलाकार लोग उससे सीखे, इतना सुंदर वो नृत्य करते हैं। कोई गाना सीख भर भी कोयल जैसा कीर्तन करेगा स्वाभाविक रूप से, किसी चीज को श्रृंगार करके नट पर उतारते हैं। और मयूर की ये गला भी कैसे चढ़ाव उतराव से युक्त और कैसा उसका पावर है, उसका रंग कैसा है, पंच सप्तरंगी है ब्रह्मा, कोई हजार कोई ऐसा करे वो हो नहीं सकता। बड़े भंगी के साथ नृत्य करता है। मयूर का कुछ गिर पड़ा, एक नाचते नाचते एक कुछ छाड़ करके गिरा दिया और परम आदर के साथ में कृष्ण ने उठा लिया बड़े प्रेम के साथ में, और बंसी बजान करते हुए प्रसन्न मुद्रा से उसको यहाँ पर, ऐसा मालूम होता है कि मयूर अपने पीछों को देख करके यहाँ पर ये कृष्ण ने अपने शरीर में लगा रखा है, आनंद में भर गए। यदि किसी को कोई एक उपहार दे कजा रख दो, उसको रख दिया आनंद ने, और उस उपहार को साथ ही साथ लेकर के बड़े आनंद से वाह बहुत सुंदर। यदि कृष्ण उनका सुदामा का चिड़वा, कृष्ण कहते हैं ये निराश सूखा हुआ ये क्या ले आया, चिड़वा कैसा है, चिड़वा सूखा, कोई रस है, कोई रस सूखा है, और ऐसे ये निरस चीज को उन्होंने दिया, कहते ये क्या लाया बेकार का, ये निरस सूखा हुआ क्या करूंगा मैं, तो इसको हजम नहीं कर सकता। और रानिया जो देख रही थी उन्होंने तो झट करके ले लिया ना, दूसरी बार उन्होंने देखा 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 ना, तो उन्होंने कहा जी अरे ये नीरस चीज है, कृष्ण को हजम ही नहीं हो, कृष्ण तो सुखोमल चीज लेते, क्या लेते हैं, मक्खन मिश्री, जो मिश्री गल जाती है कड़ी होने पर भी गल जाती है, और क्या चीज लेते होंगे, इतने मधुर से मधुर चीजों को लेते हैं, और वैसे ही बनाती है सप्तभामा इत्यादि, और वृंदावन में मैया यशोदा की बनाती है कोमल से कोमल चीज। और वो चिड़वा खा सकते हैं, रानी ने भी कहा जाए ये बेकार थी। और कृष्ण ने क्या किया थी? साथ ही साथ किसी के उपहार को देने पर प्रेम से ग्रहण कर, तो जिसका हृदय प्रेमिक है वो तो ग्रहण करेगा, जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो क्या करेगा, इसका मूल्य नहीं समझ। तो इसलिए कृष्ण ने क्या साथ ही साथ उन्होंने मयूर पंख छोड़ा, बड़े प्रेम से उठाया और यहाँ पर रख लिया। और रख लिया किधर? बाएं तरफ। किस लिए रख लिया? यही मैं उपहार दूंगा, किसको? हमारा जो सबसे अधिक प्रिय होगा उसको उपहार दूंगा। कहाँ उपहार दूंगा? उनके हाथों में, उनके चरणों में उपहार। कैसे? निकाल करके नहीं, अपने सिर के साथ में दूंगा। इसलिए और मूर्ख ने देखा जी बात, बड़ा आदर के साथ में ग्रहण किया और इसको हमको सर्वोच्च स्थिति में रखा। मयूर एकदम और भी प्रमत्त होकर के उसके नृत्य को देख करके हर्ष के मारे कृष्ण और भी मधुर स्वर से बंसी बजाने लगे। कितना कैसा मूर्छना ताल युक्त अवरोह और आरोह के साथ में बजाने लगे। दूसरे जितने भी प्राणी हैं अवरतान अपना अपना पूजन करना, कोकिल बोलना भूल गई, सब कुछ भूल गए इन दोनों का देख करके। कोकिल बोलना भूल, सुखसारी भी अपने द्रुम भुजान, द्रुम माने कौन सा द्रुम? वेद रूपी वृक्ष के कौन सी शाखा पर? कर्म ज्ञानी वाले शाखे पर नहीं, प्रेम वाली जो शाखा थी उसके ऊपर में बैठ करके आंखें बंद कर दिया और देखने लगा, माथे बंद करके वो दृश्य को ही अपने हृदय में ले लिया सब, विस्मित होकर के। सानु देश में, पर्वत के उस सानु देश में वो खड़े के खड़े रह गए, बैठना भी भूल, टस से मस इधर होना भी भूल, इधर सिर का इधर हिलाना इत्यादि, पलके गिरना भी। मयूर का क्या हुआ? मयूर भी अत्यंत भाव में विभोर होकर के और वो भी मूर्छित होकर के, नित्य इत्यादि सब उसका भी बंद हो गया। अवर्तानी समस्त सत्वम, समस्त मैंने क्या, मयूर को छोड़कर के समस्त सत्व नहीं, सब सत्व तो हुआ, और अंत में मोर भी कृष्ण के रूप और मधुर बंसी ध्वनि से वो भी एकदम वो भी अपने नित्य से अवरक्त हो गया। उसमें कृष्ण क्या करेंगे? बंसी बजाना छोड़ करके दौड़ करके मयूर को उठा लिया और गले से लगा लिया। फिर मयूर ने आंख खोल दी और फिर वही आ गया। इसी प्रकार से कोई यदि भगवत भजन करता है और प्रेमा भक्ति लाभ करता है, अवतार में समस्त सत्तम अवर्त हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, किंतु उसके लिए यथार्थ रूप में भजन करना है। भगवत दर्शन के अतिरिक्त और कोई भी चीज क्या, भगवान पूछेंगे और क्या चाहिए भक्त, क्या आपका ऐसा ही दर्शन करें, बस उस दर्शन से ही। वो अघाता नहीं है, अघाता नहीं मैंने कृत्य ही नहीं होता, बस नौ नौ रूप में, नौ नवायन रूप में कृष्ण का यह रसायन पान करता है दर्शन। और प्राणी सब तो कर्तव्य भूल जाते हैं, नित्य दर्शन करते हैं। यहाँ पर वही मयूर का बताया जी, मयूर भी अंत में मूर्छित हो जाता है। वो भी, उसको भी प्रेम मूर्छा हो जाती है। ऐसा माधुर्य लीला क्या बैकुंठ में है, कहाँ अयोध्या में है, द्वारका में हो रहा है, नौ वृंदावन के लिए कहीं देखा जाता है कि नौ वृंदावन में भी ये चीज नहीं है, द्वारका के मथुरा में भी नहीं है, तादृश माधुर्य लीला वैकुंठ में भी है। इसलिए वृंदावन पृथ्वी में अवस्थित होने से पृथ्वी का भी प्रशंसा सर्वत्र ही ये विस्तार है। कृति का विस्तार हंतायमत्रय बला हरिदास वरिजो जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंतमोति सह गोगणयोस्तयोज पानीय सूयव शतंदर कंद मूलय। दस हो गया ना। मैं चेष्टा करता हूँ कि ठीक 4:30 बजे आ रहा हूँ। मत्र बला हरिदास जब राम कृष्ण चरण स्पर्श मानव तनो दिशा को गणयोस्त पानी परीक्षित महाराज जी अपनी मैया को और वृंदावन के और भी जो अत्यंत प्रिय गिरिराज गोवर्धन की महिमा बतला रहे हैं। वृंदावन की महात्मा की भांति गोवर्धन का वर्णन महात्मा वर्णन कर रहे हैं। कोई सखी गोपियों में से कर रही है किसी सखी के लिए हंताय मत कर रहा। हंत शब्द का व्यवहार अत्यंत हर्ष में या अत्यंत विस्मय में होता है, अत्यंत आनंद से भर अथवा अत्यंत विस्मित होकर हो। गिरिराज गोवर्धन की इतनी बड़ी भारी महिमा, आयम ये है तो घर में बैठी किंतु गोवर्धन को भाव नेत्र से देख रही है। अरे ये गोवर्धन उंगली से निर्देश करके कर अबला हंतायम अत्र अबला कहाँ गिरिराज गोवर्धन और कहाँ हम अबला। किस लिए? गोवर्धन के लिए जो संभव है कृष्ण के चरणों का स्पर्श और कृष्ण के साक्षात लीलाओं को दर्शन करने का सौभाग्य, उनकी सेवा का सौभाग्य हम लोगों को नहीं है। इसलिए अबला बलजुक्त हैं हरिदास वर्य, ये कृष्ण के समस्त लीलाओं के दर्शन करने योग्य और उनकी सब प्रकार से सेवा करते हैं। और हम ऐसी हैं जो घर से निकल नहीं सकते, कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, उनकी क्रीड़ाओं को देख नहीं सकते, हम उनकी कोई भी सेवा नहीं कर सकते। हैं पूर्ण किंतु गिरिराज गोवर्धन में उत्प्रेक्षा कर रही है और अपने को दुर्भाग्यजनक बना। यह भी एक महाभाव का लक्षण है क्योंकि हमें कोई बल नहीं है। हम धैर्य और लज्जा के कारण गृह की श्रृंखलाओं को छेदन करने में असमर्थ हैं और कृष्ण के चरणों में उपस्थित नहीं हो सकती और न उनकी कोई सेवा कर सकती। और ये गिरिराज गोवर्धन जी पर्वत होकर के भी कृष्ण स्वयं उनके यहाँ चले जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आए क्योंकि वो हरिदास में श्रेष्ठ है। हंताय मद्र बला हरिदास हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है। हरिदास वर्य हरि हरति मनः हरति पापानि इति हरि। हरि उच्चारण शब्द से ही समस्त पापों को हरण कर लेते हैं और इसके बाद मन को भी हरण कर लेते हैं अपने सुंदर रूप इत्यादि को दिखलाकर, इसलिए वो हरि हैं। तो हरि के भक्तों में हरि के जो प्रिय हैं भगवान हरि के समस्त गुण उनमें संचरित होते हैं। इसलिए गिरिराज जी भी वैसे ही हैं, समस्त पापों को हरण करने वाले और चित्त को भी हरण कर लेते। जब कृष्ण का चित्त हरण कर लेते हैं तो और की तो बात ही क्या। इसलिए यथार्थ में ये हरि के समान ही अभेदी और हरि के गुण भक्त में संचरित होने से इनमें भी वो सब गुण हैं। और कहाँ हम दुर्भागा, हम लोग कितनी दुर्भागा है, हरि का कोई गुण भी हमने कृष्ण की कोई सेवा ही नहीं करती है। भक्ति करने से दंभ नहीं आएगा, भक्ति करने से दीनता है। यदि दंभ हुआ जो मैं बहुत कुछ सीख लिया, मैं बहुत कुछ जान लिया, हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं, भाव अब हमसे बढ़कर के कोई है ही नहीं, तो ये किस चीज का फल है। कहते हैं कि यदि कोई योग्य व्यक्ति नहीं हो और भगवान की ये सब कथाएं सुने या वेद शास्त्र पढ़े, उसका पढ़ना लिखना भी दंभ के लिए होता है, उसका भजन भी दंभ के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। दंभिकता दिखलाने क्या श्लोक है, जप
जप तप
जप तप अध्ययन, जप तप अध्ययन जो कुछ उसका है, दंभिका नाम दंभिक लोग जो है उनकी दंभिकता को बढ़ा देता है, और जो भक्त लोग हैं उनको क्या करेगा, नम्र विनय सरल मीठा व्यवहार मृदु व्यवहार युक्त उनको बढ़ाएगा, उसको सुनिश्चितता आएगी तीर्ण की अपेक्षा भी। और जो अभिमानी हैं उनके लिए दंभ होगा, मैं बहुत जानता हूँ, हमसे बढ़कर के और कोई जानने वाला नहीं, दूसरे को आता ही नहीं कुछ जो हमको आता है, ऐसा माने हमारे जैसा कोई भक्तिमान है ही नहीं। इसलिए कहते हैं हम अपने को कहती हैं अबला, जितना ही भक्ति होगी उतना ही अबल अबला होता है। कहते साधु संघ का बल हमें नहीं है, गुरु कृपा का बल नहीं है, शास्त्र का ज्ञान रूपी बल नहीं है, भक्ति रूपी बल नहीं है, ऐसा दीन ही असहाय समझता है। गोवर्धन सभी लोगों का दुख हरण करते हैं और चित्त हरण करते हैं, इसलिए हरि हरति इति हरि, उनका स्वभाव ही भगवान का स्वभाव है, जैसा उनमें सभी गुण संचरित होते हैं, भक्ति ये संचरित करा देती है, इसलिए हरिदास बनते हैं। श्री राम कृष्ण चरणयो चरण स्पर्श प्रमोद, ये राम कृष्ण का चरण स्पर्श से, चरण स्पर्श करते हैं और उसे प्रमोदित हो जाते हैं, चरण स्पर्श प्रमोद, प्रमोद मोद माने आनंद, प्रकृष्ट में आनंद में भर जाते हैं, भर जाते हैं। इसका लक्षण क्या है, कोई आनंदित हो जाता है तो उसको पुलक चित्त आग्र हो जाना, आंखों में जल इत्यादि आ जाना, ये आनंद का लक्षण है। तो कृष्ण के चरणों के स्पर्श से फूल विकसित हो जाते हैं, तरुण घासें अंकुरित हो जाती हैं, ये रोमावलियां मानो पुलकित हो गई, चित्त आर्द्र हो जाता है तो स्वेद होने लगता है पसीना, इनसे जो पसीने के रूप में स्वेद रूप में निकलते हैं, मानो चित्त आर्द्र हो गया, द्रवित हो गया कृष्ण के चरणों को छू करके, और आंखों से आंसू आने लगते हैं प्रेम के मारे, मानो उनके जल प्रपात हैं, मानसी गंगा इत्यादि हैं, और ऊपर से जल के झरने, ये मानो आंख से आंसू उनके झरने। कभी कभी हंसते हैं आनंद के मारे फूल फूल रहे, ये उनके दर्शन से। इसलिए प्रमोद राशि प्रकाश करते हैं ये गिरिराज गोवर्धन। ये गोवर्धन जब जैसे मानन तनोती, मानन माने सेवा, तनोती तनोती माने विस्तारेती, सेवा करते हैं तरह तरह से, केवल कृष्ण की ही नहीं, कृष्ण के आश्रित जनों की सबकी सेवा करते हैं। यदि आदमी सखा का खुद तो सेवा करता है और सखा के साथ में जो आते हैं उनका अनादर करता है तो क्या होगा, वो सखा भी उठ करके रूठ करके चला जाएगा। पहले मित्र से पहले मित्र के सखा को अधिक प्यार से आदर करो। यदि किसी को प्रसन्न कर, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कृष्ण के परिकरों को प्रसन्न करो, गैया और बछड़ों को खूब आदर करो, उनके सखाओं को, उनके जो सबसे अधिक प्रिय हैं उनको प्रसन्न करने की कोशिश। उसी तरह से गुरु जी की सेवा करना है तो क्या करो, ललिता जी राधा जी को सिखला रही हैं कि राधा जी ही ललिता जी को कहे, कौन ललिता ही, गुरु तो ललिता जी हैं ना, वो सिखला कर। देखो तुम यदि कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है तो एक बात करो, क्या करो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के जो जन हैं उनको प्रसन्न करो। कृष्ण जिसको प्यार करते हैं उसका, ये कृष्ण प्यार करते हैं तो रूठ मत जाओ, क्यों उसको करते हैं हमको नहीं करते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा। क्या करो, जिसको स्नेह करते हैं प्यार करते हैं तनिक भी उसको अधिक सेवा, देखो जो वो अपने आप प्रसन्न हो जाए। कभी उनसे तर्क वितर्क अधिक मत करना, कृष्ण कह रहे हैं कुछ और वो तुम कुछ कह रहे, ऐसा मत कर। इसलिए ललिता जी को तरह, ललिता जी उनको तरह तरह से शिक्षाएं देती हैं, और कितनी सब शिक्षाएं हैं, कहाँ कुछ पढ़ा था मुझे याद नहीं, कहीं किस पुस्तक में है, किस पुस्तक में,
इधर इधर सिखा,
राधा रस मंजरी में कहाँ है,
मंजरी इधर ऐसे सिखा रहे हैं कि करें धुलते भजन तो मैं इधर भी खा रही है।
तो कहते हैं कि गोवर्धन कृष्ण से भी अधिक उनके परिकरों की अधिक सेवा करते हैं, बछड़ों की, गायों की, गोपों की, बलदेव जी की, ये सबकी सेवा करते हैं। तब पाल्यमान गौ क्या करते हैं, सुंदर सुंदर हरी हरी कोमल कोमल घास, उनको राबड़ी मलाई या आम का फल नहीं चाहिए, अधिक आम का फल खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। उनको खिचड़ी खिला मर जाए, पागुत नहीं कर सकेंगे
खिचड़ी को,
यदि गाय को मारना हो तो बस खिचड़ी खिला तो मर जाएगी, थोड़ी देर पेट फूल जाएगा, दम फूल जाएगा, बस। इसलिए गौओं को ये सब नहीं, गौओं के लिए सुंदर सुंदर कोमल कोमल घास चाहिए, तो वो कोमल कोमल घास पानी के लिए, झरनों में पानी, तालाबों में पानी, और सहचरों के लिए सह गो गणयो, गो गण और फिर गण अलग से लगाओ, गो गण, अच्छा गो गण में क्या हुआ, गो महिष्य छा जो उनके साथ में चल रहे हैं वो सबके लिए जो जो जैसे वैसे उनको दे रहे हैं, और गो अब फिर गण को अलग कर लो, गण माने कृष्ण के जो गण हैं, कौन सखा लो, बलदेव सिद्धांश मधुमंगल इत्यादि सब इनकी टोली है, इनके लिए भी, इनके लिए क्या देते हैं, फल मूल कंदर पानीय सु पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई, इनके लिए देते हैं पानी पानीय सुयवस सुंदर घास है, और पानी किसके लिए, गाय के लिए, और गोपालों के लिए क्या देते हैं, पानीय सुंदर सुंदर हर पवित्र पानी, और सुयवश सुंदर सुंदर फल केले अमरूद नारंगी उस वन में होते थे गिरिराज गोवर्धन के, आमले टेटी और क्या खट्टे मीठे बेर पीलू ये सब फल ये सब चीजें ये देते सखाओं से। और कंदर खेल तमाशा करके बच्चे जब थक गए तो खंदराएं देते हैं किसके लिए,
विश्राम करने के लिए,
उसमें रत्न खचित पत्थर स्फटिक हैं उस कंदराओं के अंदर है, सुंदर सुंदर मणि प्रदीप है अपने आप में, वो मणि ही प्रदीप का काम करती है उस कंदराओं में। और सैया उपयोगी सभी चीज उसमें
बैठने के लिए सुंदर,
गर्मी काल में ठंड और ठंड में गर्मी अपने आप, जैसे कि कृष्ण को किसी प्रकार का कष्ट ना हो,
एयर कंडीशन,
एयर कंडीशन क्या होगा उससे तो तबीयत खराब और हो जाएगी, ठंडी रहेगी और बाहर में आ जाओ देखो जैसे तबीयत खराब हो जाएगी, और वहां पर ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से परिचर्या करते हैं वो, केवल प्रभु की परिचर्या नहीं बल्कि इनका पूजा विधान जैसा होता है ये बतलाया, जैसे सखाओं का भी गौओं का भी गोगण का भी उसमें छाग इत्यादि सब दिया गया। और छा का अर्थ यदि कर दो दूसरा
अजा गाव महिषस्य अजा नजा अजा
अलग हो गया, अजा माने जो गाय ने जन्म ने अभी बच्चा नहीं दिया
बछड़ी
अभी कुमारी है अभी गाय अभी बच्चा जिनका जन्म है वो अजा,
गावो एक बछड़ा
और
गो जो एक बछड़ा है गो,
गो माने जो एक बछड़ा दो बछड़ा
महिष अधिक बच्चा,
महिष माने काली गाय को
अधिक बच्चा हो गया,
अधिक बच्चा नहीं और काली भी
काली
गाय हो और अधिक बछड़े हो गए हैं ये महिष। और उसका अर्थ ऐसा भी कर लो जैसे कृष्ण की गायों में दो चार महिष भी हैं भैंसे भी हैं और कुछ बकरियां भी उनके साथ में चल रही हैं, बकरियां नंद बाबा की नहीं हैं, वो गरीब ग्वाल लाल जो वहां थे उन लोगों की बकरियां इसमें सम्मिलित हुए उनके कृष्ण का संग नहीं छोड़ दे, और भैंसे भी वैसे ही और धनिमानी जो हैं उनकी होते हैं गाय,
वो धन
भैंस पहले नहीं बहुत कम पाल, हम लोगों के सामने भैंसों का उतना प्रचलन नहीं था गायों का ही अधिक प्रचलन, यदि बुद्धि स्थूल करनी है तो
भैंस का दूध
खाओ और बुद्धि को सूक्ष्म करना है पवित्र लाना है भगवत भक्ति इत्यादि सात्विक चीजें तो आजकल लोग अधिकतर भैंस का दूध बलवान अधिक होंगे, विदेशों में भी ऐसा, अब विदेशों में धीरे धीरे गाय का प्रचलन हो रहा है। गोगणियों इति विविध प्रकार की सेवा सामग्री संपादन करके हरिदास वज्य नाम आपका सार्थक है गिरिराज गोवर्धन का। मान लिया कि वहीं पर एक आकाशवाणी होती है वहीं पर, या एक सखी पीछे से करती है, सबसे आश्चर्य बात तो यह है गिरिराज जी ऐसी सेवा करते हैं जो दूसरे नहीं देख पाएंगे, वो क्या उन कंदराओं में मणियों से दीप्त सुंदर सुंदर कुंज और उसमें गो माने यहाँ पर गोपियों को भी ले लो, वो गोपियों के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं, इसलिए गिरिराज गोवर्धन जी परमद मदन लीला कंदरे कंदरे के रचयतन मजुनु दंत मश्मी नमन इतिकिल कल्लार्थक लग्न कस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासन्ते रश्मिधि नव जूनो साक्षिणी दान केले। गिरिराज जी कैसे हैं रसनिधि नव जूनो, नव जूनो रसनिधि रस की निधि है समुद्र है या रस की अंतिम सीमा पर जो है कौन जूनो राधा कृष्ण इनकी साक्षिणी दानी केले दानी केली के ये साक्षी कौन सी दान केली गव्य के लिए जा रही हैं घी दूध कहीं मक्खन सब लेकर के गोविंद कुंड में जा रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं तुम कौन है? तो तुम देख नहीं रहे हो, दृष्टि शक्ति नहीं है, देख रहे हो ये तुम कौन हो, पूछ रहे हो मुझे कौन? तो टेढ़ी क्यों बोलती है? तो आप सीधा क्यों बोलते हैं?
सीधा बोलते
हैं, यहां रख दो, क्यों ले जा रही है? इस तरह से साक्षिणी दान के दान की जो केली हो रही है, वार्तालाप परस्पर हो रहा है, इसकी ये साक्षिणी है। जब श्लोक है मुझे याद नहीं, पश्चिम का रूप गोस्वामी के पुष्प दो हैं,
ललित माधव विदग्ध
विदग्ध माधव, दोनों में संलाप हो रहा है। संलाप माने क्या? सम्यक रूपेण आलाप, आलाप माने उत्तर प्रत्युत्तर, उत्तर और प्रत्युत्तर हो रहा है। एक शब्द है तरुणी, अरे तरुणी आप कहां से आ रही हैं? तरुणी शब्द, आप यदि पार जाना चाहती हैं तो हमारी तरुणी में बैठ जाए, तरुणी में बैठ जाए।
तरुणी
राधा जी ने उसका अर्थ ले गए तरु, मुझको पेड़ पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं पेड़ पर चढ़ू, मैं पेड़ पर क्यों चढ़ने लगी? आपको जरूरत है तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। अरे मैं स्पष्ट रूप में कराया जैसे तरुणी, तरुणी 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 माने नौका, तनका जैसे तब सूर्य में इतना तेज है या उधर में हमको देखने की कोई आवश्यकता नहीं, अब उसमें लगा दिया थोड़ा सा इधर तो हो गया वो तरणी माने क्या होता है? सूर्य, तो सूर्य। अरे मेरा उधर में कोई तात्पर्य ही नहीं है, कृष्ण कहते हैं मैं ये कहता है हे तरणी, यदि तरणी में चढ़ना है तो इधर जल्दी से आ जाओ, फिर उसका रूपांतर करके कोई और उसका अर्थ दूसरा कर देती है। ऐसी श्रीमती राधिका जो है विश्व मोहन को भी मोहित कर देती है अपने उत्तर प्रत्युत्तर से, वो हमारे ऊपर में कृपा करें। तथापि हमें पढ़ी नहीं, तुम पढ़ से जाना। तो इस तरह से वहां पर इन लोगों का संलाप जो कभी इत्यादि में और भी कितनी क्रियाएं हुई हैं राष्ट्र इत्यादि में, ये सब आलाप संलाप प्रलाप अपलाप कितने हैं, देश संदेश अपदेश व्यभिदेश व्यपदेश, ये 12 हैं। ये 12 को गिरिराज गोवर्धन में दिखलाते हैं, ये सब सुनने वाले हैं जो किसी को भी सुनने को नहीं मिलता। इसलिए ये हरिदास जो हम लोगों के लिए ये कभी संभव नहीं, तथापि सामान्य रूप से सब परिकर कृष्ण की प्रचर्या यहाँ पर, किंतु इसके बारे सभी समझ लो कृष्ण की सब प्रकार से ये सेवा करते हैं। तथापि जिस वस्तु में जिसका संतोष और रुचि होती है उसके लिए उसको लगा दो, अर्थात गोवर्धन जी को जिस सेवा में रुचि है वो कृष्ण की तरफ से वो रुचि कर मिल जाती है, वो सब सेवाएं मिलती हैं बड़ी रुचि से कर। और कृष्ण के परिकरों में भी गैया बछड़ा से लेकर के सखा तक जिनको जिस जिस चीज में रुचि है उसी को देते हैं। किसी को अमरूद खाने में रुचि है तो क्या करते हैं? किसी को आम खाने में रुचि है तो स्वादिष्ट आम देते हैं, किसी को जो चीज की रुचि है। गैया बछड़ों को क्या चाहिए? हरी घास चाहिए। पानी पीने वालों के लिए पानी देते हैं, छाया चाहने वालों को छाया देते हैं। इस तरह से जिसको जब जिस चीज की जरूरत होती है उसको उस तरह से ये सेवा करता है। वही सेवक बड़ा श्रेष्ठ होता है जो रुचि देख करके सेवा करता है, जो रुचि नहीं जान करके सेवा करता है। गुरु जी बाहर से आए, बाहर से आए थक करके आए हैं, बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुख सूख रहा है और सेवक ने क्या किया, ये पंखा लेकर के झलने लग गया और वो बार बार पानी की तरफ में देख रहे हैं और वो क्या कर रहा है, पंखा ही जल रहा है। तो वो उच्च कोटि का सेवक देख करके समझ चाहिए जिसे ये क्या चाहते हैं। ये विषम सेवक जान सकता है, दूसरा नहीं जानता, कहने पर वो जानेगा और कहने पर भी वो अपने मन के अनुसार में उदेगा, उसको जो चीज अच्छी उचती है ना वही चीज देगा। और जो यथार्थ सेवक है वो जो चाहते हैं ठीक अनुरूप देगा, रुचि का। गिरिराज गोवर्धन जी जिसकी जैसी रुचि है, कृष्ण की जब जैसी रुचि होती है, उनके सेवकों को जब जैसी रुचि होती है, कुंडी चाहिए, कृष्ण कुछ बजाना चाहते हैं तो वादनशाला दे दिया। वादनशाला कहाँ है, कहाँ पर, दो जगहों में, एक मुखराई के पास में कभी कहते हैं और एक है जहाँ पर श्रीनाथ जी निकले हैं,
गोविंद कुंड के पास,
वहाँ पर एक पत्थर है, पत्थर से थोड़ा बजाओ ना तो वादनशाला। इसलिए कृष्ण और उनके सखालोग जो कुछ चाहते हैं ठीक मन के अनुरूप में सेवा करने का नाम ये जथा। देखो तो गोवर्धन के कितना सौभाग्य और हम लोगों का कितना दुर्भाग्य, इसलिए हम अबला कोई सेवा उनके रुचि के अनुसार नहीं। इसमें बाधक क्या है, हम लोग भी सेवा कर लेते हैं तो बाधक क्या है, बाधक कुल शील और इस वंश में आने का कारण स्त्री होना और विशेष क्या है, कुल धर्म, लोक धर्म और गुरुजनों का आदेश, उनसे लज्जा और धैर्य। अभी तक धैर्य है इसलिए घर के अंदर में बैठी, धैर्य को तोड़ नहीं सकती, गिरिराज के लिए ये सब अनुकूल है इसलिए सेवा करते हैं। और चरण स्पर्श का कार्य कहा, चरण स्पर्श का और एक भी अर्थ, चरण माने जदराम कृष्ण चरण स्पर्श, इसमें कृष्ण ही उनकी रुचि के अनुकूल हैं। अभी प्रेत हैं, उद्देश्य हैं कृष्ण, बलदेव नहीं, ये तो आत्मगोपन करने के लिए अपने भीतरी भावों को छिपाने के लिए राम कृष्ण चरण कर रहे हैं। राम कहने से लोग कोई कोई दोष नहीं देखेंगे, राम लगा दिया है इसलिए। और यदि केवल कृष्ण कहती तो लोग कहते अरे कृष्ण से इसको प्रेम है, इसलिए उस प्रेम को छिपाने के लिए, साधारण रूप में प्रेम को कहने के लिए इसको क्या वो छिपाते हैं, अवहित्था अवलंबन करके ये कहे जद राम कृष्ण चरण। किंतु कहने का तात्पर्य ये नहीं है, जद राम कृष्ण रमणीय कृष्ण, यहाँ पर राम माने अत्यंत रमणीय, कोमल, मनोहर, सुस्निग्ध, ये राम जो है ये कृष्ण है, इनके चरण स्पर्श। चरण स्पर्श माना एक और होगा, चरण स्पर्श माने चरण स्पर्श तो है ही है, ऊपर में जाते हैं चरण स्पर्श करा, एक चरण माने होता है आचरण, चरण स्पर्श माने आचरण स्पर्श, या आचरण माने क्या लीला, कृष्ण की समस्त लीलाओं को निकट से अपने ऊपर में स्पर्श करते हैं। यहाँ पर स्पर्श माने देखना भी होता है और स्पर्श माने निकट से उसको अनुभव करना। कृष्ण की जितनी भी गंभीर लीलाएं हैं गिरिराज जी उन लीलाओं को, आचरणों को, चरण को स्पर्श करते हैं। कैसे स्पर्श करते हैं, अपनी आंखों से स्पर्श और शरीर से स्पर्श, उनके ऊपर में ही ये सब लीलाएं होती हैं। इसलिए गिरिराज का कितना परम सौभाग्य है। ओह कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके, उनका सुंदर दर्शन करके गिरिराज कितने पुलकित होते हैं कि उनका हृदय द्रवित हो जाता है, शिलाएं गल जाती हैं और हम लोगों का हृदय ऐसा है कि गलता नहीं। महाप्रभु जी की लीलाओं की कथाएं इतनी सुंदर सरस हैं, हृदय को द्रवित करती हैं। पशुपाची जुरे नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं जिन महाप्रभु जी की लीला कथाओं को श्रवण करके शिलाएं गल जाती हैं, द्रवित हो जाती हैं और हमारा हृदय उन पत्थरों से भी अधिक अपराध के कारण ऐसा हो गया है, नाम ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की कथाएं आती हैं और तभी हमारा हृदय नहीं किंतु पशु पक्षी झूरे पाषाण, पशु भी रोने लगे और हम लोग ऐसे हैं। ये सचमुच में समझना चाहिए, ये किसी विद्या के द्वारा नहीं होगा, लाख पढ़ जाएंगे ना तभी नहीं होगा, ये कैसे होगा? प्रेम के द्वारा होगा। प्रेम कैसे होगा? इसके लिए चेष्टा करनी होगी। ये प्रेम होगा कृष्ण के जो परिकर हैं उनके कृपालु वैष्णव बन हैं, यदि वैसे हों शक्तिशाली तो उनके संग में हरि कथा श्रवण करने से ही उनकी कृपा से होगा या भगवान की कृपा से। ऐसे ये प्रेम नहीं होगा, चेष्टा से हम कर लेंगे, व्याकरण के द्वारा तो जरूर हो जाएगा, अर्थ आएगा तो चित्त द्रवित हो जाएगा, उसे और भी कठोर भी हो सकता है, ये सबसे नहीं होगा। महाप्रभु जी कहते हैं प्रतिपदम आनंदम की आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृताश्वास, ये जो आनंद का समुद्र जो लहराएगा उसकी तरंगे उठेंगी हृदय में, वो कैसे उठेंगी, कैसे उठेगा? विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, जितनी आरती से संबंध ज्ञान से पुष्ट होकर वैष्णव के अनुगत्य में लीलाओं का स्मरण और कथाओं का चिंतन यदि कोई करेगा तो और किसी चीज के सीखने से नहीं होगा। कोई लाख सीखे बस अभिमान आ सकता है, कुछ पांडित्य आएगा पांडित्य का अभिमान हो जाएगा। गाय अपने बछड़े के प्रेम में रोती है डकारती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ करके होता है। एक सुअर अपने बच्चे के लिए तड़पती है रोती है, यह तड़पन जो उसमें आती है यह किसके द्वारा होता है? पढ़ लिख कर। इसलिए ये नाम में महाशक्ति है, आनंदाम बोधि वर्धति वर्धनम प्रेमामृता आस्वादन और अंत में सर्वात्मा सुनपन, ये कृष्ण नाम के द्वारा होगा। कौन सा कृष्ण नाम? साधु संग में उसकी महिमा सुन करके धीरे 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 उत्कर्षता होगी, साधन भजन। इसलिए ये कारण ये सौभाग्य गिरिराज गोवर्धन को हमारे जीवन में नहीं हुआ। गिरिराज गोवर्धन का महात्मा वर्णन करते हैं और अपना दुर्भाग्य उनको अनुभूति हो रही है। जो साधक भक्त होगा पहली स्थिति में अपना गुण और दूसरों का दोष मालूम होगा, अनुभूति करेगा। क्या मालूम? अनुभूति करेगा। ये सब हमारे बाधक हैं भक्ति के, ये बातें हमारे बाधक हैं और ये संग भी वैसा नहीं, इनके वजह से हमारा भजन नहीं होगा। और जब उच्च कोटि में थोड़ा सा जाएगा तो देखेगा सभी भजन कर रहे हैं, मैं ही दुर्भागा हूं, मेरा भजन नहीं होता, उल्टा हो जाएगा। गोपियां आज देख रही हैं कि गिरिराज गोवर्धन में जो गुण है वो हमारे अंदर में नहीं गुण है, अपना दोष सब दिखने लग जाएगा, यहां पर हमारा दोष। जिस समय अपना दोष दिख पड़ने लगे और दूसरों का गुण दिखने लगे, सोचो जो अब कुछ आभास होने की का समय आ गया है। और जब तक दूसरों का दोषी दोष दिखता है वो बदमाश है, वो नंबरी बदमाश है, वो कपटी है, वो धूर्त है, ने? ये जब आएगा वो हमारे भजन का वही बाधक है। तो समझो जैसे ये अभी बहुत सी बात है, और जब अपना दोष दिखने लग जाए तो समझो ये ठीक होगा। रूप सनातन जी कभी किसी का दूसरा का दोष देखते हैं? दूसरे रघुनाथ दास कभी नहीं, उनको फुर्सत कहाँ है, बस अपना दोष देखते हैं दुर्भागा में। जैसे गोपियां देखिए भक्ति की चरम सीमा पर उठकर, जैसे कृष्ण सब समय विमुक्त रहते हैं और वो अपना दोष देख रहे हैं। कहते हैं कि यदि हम लोग आज सौभाग्य से आज गोवर्धन की शिला भी होती तो कृष्ण गोचार में जाते तो उनके चरणों से स्पर्श होता कि नहीं, आज हम चाह करके नहीं कर सकते। लोक लज्जा का भय, दूसरे देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये भक्ति में भी और भी बाधक है। कोई व्यक्ति बाजार में जा रहा है और हरे कृष्ण दोनों हाथों को उठा करके गाता हुआ चला जा रहा है, तो हम लोगों को इसलिए नहीं ऐसा होता कि लज्जा होती कि ये लोग क्या कहेंगे, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। और हरिदास ठाकुर का ऐसा होगा उनको नहीं। इसलिए ये धैर्य और लोक लज्जा यहाँ पर भक्ति में बाधा है। गोपियां भी वही कह रही हैं, यही हमारे लिए, हम एक गोवर्धन की शिला हो जाती उसमें सौभाग्य हमारा अधिक होता है जो कृष्ण के चरणों में हम करते हैं। और उनकी वंशी ध्वनि सुनने से वो द्रवित होकर के वो शिला भी गल जाती, किंतु आज हमारा मन द्रवित नहीं हो रहा है। कृष्ण चरण स्पर्श, उनके आचरणों को हम स्पर्श नहीं, उनकी लीलाओं गाथाओं को जो गिरिराज गोवर्धन के लिए संभव है देखना, वो हम लोग को सुनने के लिए भी संभव नहीं है। कृष्ण तो दौड़ करके एक सांस में गिरिराज गोवर्धन पर चढ़ जाते हैं, सखाओं से कितनी लीलाएं करते हैं, दौड़ करके हम लोगों के पास में आ जाएंगे, हम लोग कुल गांव में हम तो देख करके छिप जाएंगे घर के अंदर, लोक लज्जा का डर है। वो चाहेंगे भी तो हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। कृष्ण चाहेंगे अपनी